وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب یہ ایک ایک اعتراض کی بات آ رہی بھی ہے ان کی، اور یہ بھی اس کے اندر 9 سے 14 تک آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، البتہ اگر تم پوچھو ان سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یعنی یہ مشرکین مکہ سے آپ سوال کریں اے نبی کہ کس نے پیدا کیا آسمان کو، بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے لات اور عزا نے پیدا کیا. حیرت انگیز بات یہ ہے، وہ یہ کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ان کو اس زبردست غالب اور حکمت والے، علم والے نے. یعنی وہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کی یہ صفات بھی ان کو پتہ ہیں کہ وہ غالب بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، وہ اتنا غالب، اتنا بڑی اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ ہی پیدا کر سکتا ہے آسمان و زمین کو، اور اس کا علم اتنا ہے کہ وہ ہی پیدا کر سکتا ہے آسمان و زمین کو. یعنی وہ مانتے ہیں اس بات کو، پھر پرابلم کیا تھا؟ What was the problem then? اس کے لیے بہت ضروری ہے ہم جانیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کا شرک تھا کیا. کیونکہ یہاں سے تو ہمیں، ہمارے سامنے تو کوئی یہ بات کہے، ہم تو کہیں گے سب سے بڑا توحید والا ہے، ہم تو کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہی ہے، اس کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو وہ ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا وہ خدا کو تو مانتا ہے. ہم تو آج ہندوؤں کے بھی بہت اس بات سے قائل ہیں، نہیں نہیں آپ ایسے نہ کہیں، وہ تو مانتے تو وہ بھی ہے خدا کو ہے نا. تو وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ مسلمان تھوڑی کہلائے، وہ مشرک ہی کہلائے نا. تو ان کا شرک پھر تھا کیا؟ چاہے وہ بت پوچھتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا آسمان اور زمین کو، تو شرک کہاں تھا؟ یعنی وہ عبادت میں تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، چاہے وہ یہ کہتے تھے، مانتے تھے کہ ایک، دیکھیں ایک بات ہوتی ہے رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، وہ تو وہ کرتے تھے، ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے تھے. لیکن دیکھیں یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت. توحید ربوبیت تو یہ ہے نا کہ مان لینا کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پیدا اسی نے کیا ہوا ہے، کائنات کی تدبیر وہی چلا رہا ہے. یہاں تک وہ سب ان کا سٹریٹ تھا، توحید ربوبیت میں ان کا کوئی شرک نہیں تھا. کہاں پہ شرک آتا تھا؟ توحید الوہیت میں، یعنی الہ ماننے میں. اب ان سے کہا جا رہا ہے، سمپل سی ان کو لاجک دی جا رہی ہے، جب تم یہ بات مان گئے ہو کہ مالک اللہ، خالق اللہ، تدبیر کرنے والا اللہ، تو پھر یہ بھی مان جاؤ نا کہ عبادت کے لائق بھی صرف صرف ایک اللہ ہی ہے. یہاں پہ وہ ڈنڈی مارتے تھے کہ عبادت میں پھر کسی اور کے آگے بھی جھکنا شروع کر دیا، نظر و نیاز کرنے میں کسی اور کے نام کی بھی نظر و نیاز کرنی شروع کر دی، پھر شکر ادا کرنے میں کسی اور کا بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، پھر دعائیں مانگنے میں کسی اور سے بھی مانگنا شروع کر دیا. یہ ان کا پرابلم تھا. ادروائز حج پہ وہ بھی جاتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یہاں تک ان کا بھی سیم تھا، ان کا بھی تلبیہ سیم تھا. یہاں تک آگے وہ کہتے تھے اللہ سے تو تیری لیے ساری بادشاہت ہے، سوائے جس کے جن کو تو نے خود اپنا شریک کر لیا، اس کے علاوہ بادشاہت تو ابھی تیری ہے، لیکن بس وہ تیرے شریک ہیں جن کو تو نے خود ہی شریک کیا ہوا اپنا. تو یہ ان کی شرک تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ہم کہہ دیں کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہوا آسمان کو، کسی اور نے بنایا زمین کو. یہاں شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کوئی اور اللہ کا پارٹنر تھا، یہ صرف شرک نہیں، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ انسان عبادت کے جو مراسم ہیں، مراسم سمجھتے ہیں ریچولز جو عبادت کے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، سجدہ کرنا، کسی کے اوپر بھروسہ کرنا، کسی سے خوف کھانا اس طرح سے جیسے اللہ سے خوف کرنا ہوتا ہے، کسی سے محبت کرنا اللہ سے جیسے محبت ہونی چاہیے، یہ سارے پھر شرک ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں تو مسلمان ہوں، لیکن پھر کہتا ہے یا علی مدد، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ کیا ہے پھر؟ بکرے کسی اور کے نام کے اوپر دیتا ہے کہ یہ ان کے نام پہ ہے، امام حسین کے نام پہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو ثواب پہنچے، ان کے نام پہ ہے. तो ये है इबादत में किसी और को शरीक कर लेना, औरों के नामों की नजरों नियाज देना, ये भी इबादत ही है। तो अफसोस से कहना पड़ता कि जब हमें ये पता ही नहीं ना मुशरिकी ने मक्का का शिर्क क्या था, तो फिर हाँ हमारे मुसलमान उस शिर्क में मुब्तला, उनको पता ही नहीं है कि हम वही कर रहे हैं जो वो करते थे। हम सोचते हैं बस वो ना असल में अल्लाह को नहीं मानते थे, वो बुतों को मानते थे। ऐसा नहीं है, कुरान इस बात का गवाह है कि वो मानते थे अल्लाह है और उसने तख्लीक किया, बल्कि अल्लाह अल अजीज भी और अल अलीम भी है, ये आयत बता रही है आपको। लेकिन फिर भी वो बुतों को अपना सिफारशी समझते थे, अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे ना, उनको ये भी पता था कि सिफारिश की जाएगी। ये इनकी इतनी बड़ी अल्लाह के पास, यानी ये इतने नेक जो थे, इनकी इतनी बड़ी अल्लाह के पास पहुंच है, बहुत पहुंचे हुए हैं ये, जैसे हम कहते हैं ना बहुत पहुंचे हुए, इसी तरह उनको भी लगता था ये बहुत पहुंचे हुए। जब ये कहेंगे तो अल्लाह ने इनकी टालनी थोड़ी है, इनका जोर है अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने इनकी टालनी नहीं, अल्लाह ने जो इन्होंने कहना वैसे कर लेना। तो बस ये हमसे राजी हो गए तो बस अल्लाह खुद ही राजी हो जाएगा, फिर इनका दामन पकड़ के ही हमने पार हो जाना, कितने भी गुनाह करने इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं अब्दुल कादिर जिनानी के जो मुरीद है वो पार हो ही जाएगा, जो भी उनका मुरीद होगा, अब चाहे वो चोर है चाहे वो डाकू है चाहे कुछ भी है, वो बस मुरीद जो बन गया, साथ अपने नाम के साथ कादरी लगा दिया, साथ चिश्ती लगा दिया, साथ कुछ और इस तरह का लगा लिया, बस हम वो बन गए, हमारी निस्बत तो उनके साथ हो गई है जी। तो ये इन निस्बतों से कोई पार नहीं होना, और फिर उन्हीं से दुआएं मांगनी। कुछ लोग अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की नमाज भी पढ़ते हैं उनकी तरफ, उनकी कब्र की तरफ मुंह करके। तो असल तौहीद ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के सामने नमाज पढ़ लूंगी तो बस या सद्दा कर लूंगी, बल्कि तौहीद ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करती हूँ और मैं सबका इनकार करती हूँ। ला इलाहा को तो समझ लो कि पहले ला इलाहा कहो, कोई इलाह है ही नहीं है, है ही नहीं है। यहीं पे तो उनकी डंडी थी, वो अल्लाह को तो मानते थे, इल्लल्लाह वाला जो पार्ट है ना वो इतना तो मानते थे, ला इलाहा को नहीं मानते थे कि कोई इलाह नहीं। और एक तरह से शिर्क तो खैर शिर्क ही है, लेकिन एक एक लिहाज से ये कहना मेरा ख्याल अप्रोप्रिएट होगा, ये मेरा अपना ख्याल है, कहीं पढ़ा नहीं है, मैं वैसे एक बात कह रही हूँ कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना उनका शिर्क जो है वो आज के इन लोगों के शिर्क से थोड़ा इस लिहाज से, शिर्क सारे ही बुरे हैं लेकिन थोड़ा इस लिहाज से यानी फिर भी बेहतर था कि वो आसमानों जमीन का खालिक तो अल्लाह को समझते थे ना, मालिक तो समझते थे ना। आज तो वो कहते हैं, आज का शिर्क देखें कैसा है, वो कहते हैं नहीं जी आसमानों जमीन तो खुद ही बन गए, किसी ने इनको पैदा ही नहीं किया, कोई है ही नहीं इनका मालिक, खुद ही सब चल रहा है निजाम, यानी कोई खुदा की कोई जरूरत ही नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं जरूरत है, खुदा जिंदगियों में है ही नहीं, हम जो खुद हैं वो खुद हैं, बस खुद ही सब कुछ होता है। इतनी तो उनको भी अकल थी कि लात और उज्जा हमारे कुछ नहीं कर सकते, ये आसमानों जमीन की तखलीक, और उनको ये भी पता था कि ये खुद नहीं बन गए, और वो अल्लाह को अल अजीज और अलीम भी मानते थे, तब भी किस कदर रद्द है उनके शिर्क का, तब भी कितना बुरा उनके शिर्क को कहा गया, तब भी उनकी शिर्क की मुकाबले में इस्लाम आया, लेकिन आज क्या इस शिर्क को कोई शिर्क नहीं समझा जाता, ये कोई शिर्क कहा ही नहीं जाता कि ये कोई शिर्क है। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा महदन, वो अल्लाह वो जात है, वो अल अजीज और अल अलीम वो जात है, सोचो उसका कि वो है जिसने जमीन को महद बनाया। महद कहते हैं वो जो बच्चों का पंगूड़ा सा होता है ना, झूला सा होता है, उसके अंदर बच्चे को लिटा देते हैं और आराम से झूले झूलता रहता है और सो जाता है। अब वो झूला क्या, सुबहान अल्लाह, देख लें कि उस जमाने में तो पता भी नहीं था कि जो जमीन है वो घूमती है दौड़ रही है, कोई पता नहीं था इस तरह की बातों का ना, लेकिन इस लफ्ज ने बता दिया कि वाकई ये कुरान अल्लाह का कलाम है कि ये जमीन वाकई पंगूड़े की तरह है कि घूम भी रही है लेकिन स्टिल लोग इसके ऊपर सुकून से काम भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, यानी कोई महसूस भी नहीं हो रहा, बहुत आराम से सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई इसके अंदर ऐसी नहीं है कोई हलचल मची हुई, कोई जैसे जलजला आता है एक तरफ इधर चीजें गिर रही हैं उसकी, कोई इतनी तेज जो भाग रही है, इसकी इसकी स्पीड ऐसी है जैसे आप एक बुलेट फायर करें ना तो कितनी तेजी से वो हवा के अंदर जा रहा था, इस तरह समझ लें कि ये जमीन की स्पीड है कायनात में, इतनी तेजी भाग रही है। लेकिन कहीं महसूस हो रही है कहीं बिल्डिंगें गिर रही हों, कहीं घर गिर रहे हों, कहीं पानी ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि जी जमीन बहुत तेज भाग रही है, नहीं, सब पुरसकून है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल उस पंगूड़े की तरह जो हिल रहा है लेकिन बच्चा उसमें सुकून से सो रहा है। एक वन वर्ड है ना, देखें इसने कैसे डिस्क्राइब कर दिया इस चीज को, ये जमीन घूमती भी है चल भी रही है और स्टिल तुम्हारी जिंदगी इसमें आराम से है। वजाला लकुम फीहा सुबुलन, और बनाए हमने तुम्हारे लिए इसमें रास्ते, लाल लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पालो हिदायत पालो। और अल्लाह ताला ने इस जमीन में ऐसा निजाम रखा कि रास्ते बनाए, रास्ते बहुत जरूरी हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। रास्ता ना हो, रास्ता ना मिले तो इंसान मंजिल खो सकता है, तो अल्लाह ताला ने इस जमीन में रास्ते बनाए, यानी ऐसा भी नहीं पहाड़ों का सिलसिला बना दिया कि पहाड़ ही पहाड़ चलते जा रहे हैं आप दूसरी तरफ क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, उनके अंदर भी रास्ते बना दिए। फिर ऐसा नहीं अल्लाह ताला ने सिलसिला बनाया कि कहीं कोई निशानी ना हो, निशानियां भी बना दी। आप देखिए ना डेजर्ट का आप इमेजिन करें, उसमें कोई निशानी नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, चारों तरफ नजर घुमाएंगे एक जैसा ही नजर आएगा। अब आपको कहें कि फलां जगह पहुंचना है, अब इसके अंदर किस तरह जाएंगे, कौन सा रास्ता होगा, और रास्ते भी अल्लाह ताला ने अपनी एक नेमत के तौर पे उनको गिनवाया है। हमने कभी गौर किया इस बात पे, कभी नहीं मेरे ख्याल में हमने ये सोचा होगा कि रास्ता भी जो है ना, जब हम किसी रोड पे जा रहे हो कि रास्ता ये भी अल्लाह की नेमत है। देखें कई नेमतों का वाकई एहसास सारी जिंदगी नहीं होता, सारी जिंदगी नहीं होता, और रास्ता वन ऑफ देम है। तो दुनिया के अंदर इस तरह रास्तों का इंतजाम ना होता, ये अल्लाह की तरफ से नेचुरल रास्ते भी बनाए गए थे पहले जमाने में, जब रोड्स नहीं भी होती थी तो नेचुरल रास्ते अल्लाह ने बनाए हुए थे। तो ऐसा ना होता तो इंसान कैसे सफर करता, कैसे एक से दूसरी जगह जाता, ताकि तुम राह पाओ, तुम रास्ते तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, अपनी मंजिल तक पहुंच सको। इसमें बड़ी गहरी बात है। ये बताएं क्या कोई ऐसा मुसाफिर होता है जो सफर करने से पहले चाहता हो कि मैं लॉस्ट हो जाऊं, कोई ऐसा होता है? जिंदगी के इस इन सफरों में जो हम करते हैं इसमें हम कभी लॉस्ट नहीं होना चाहते ना, लेकिन एक सफर वो है जो आखरत का सफर है, अल्लाह की तरफ जाता है, जन्नत की तरफ जाता है, उसमें हमें परवाह ही नहीं है हम लॉस्ट हो जाएं या सीधे पे चल रहे हों, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। ये कैसी बात है, यानी यहां पे तो हम लॉस्ट नहीं होना चाहते। मैं अपनी दोस्त के घर जाना है तो मैं नहीं चाहती कि मैं सारा दिन लॉस्ट ही रहूं, उसने बुलाया 10 बजे है, मैं रात के 10 बजे पहुंचू, सुबह के 10 बजे छोड़ के रात को पहुंच रही हूं, क्यों जी मैं लॉस्ट हो गई थी। कोई भी नहीं ऐसा चाहता, उसके लिए हम बहुत इंतजाम करते हैं, GPS भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं कि मैं बस सही से पहुंच जाऊं। अंदाजे कर करके कोई नहीं जाता, हाँ अंदाजा है मुझे वहां पे उस शहर में है, चलो कोई बात नहीं पहुंच ही जाऊंगी, उस शहर में है तो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगी, ऐसे कोई नहीं चलता। डायरेक्शंस देख के जाते हैं, जब ये GPS नहीं थे तब भी मैप्स देखते थे, तब भी रास्तों का तायुन करते थे फिर चलते थे, तब भी रास्ते दिखाने वाले होते थे, गाइड्स होते थे। तो ये जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाने के लिए क्या हमने कभी सोचा कौन सा रास्ता जो जाता है, कोई GPS इसके लिए भी लिया हमने, कोई मैप देखा, GPS नहीं थे, मैप देखा, कोई किसी गाइड की रहनुमाई में चलने की कोशिश की, या लॉस्ट ही रहना पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं पहुंच ही जाएंगे ना जन्नत में, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाना है, तो वो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। यहां पे बताया गया है कि जिस अल्लाह ने तुम्हारे दुनिया में ये रोड रास्ते ये बनाए, उसी ने तुम्हारे लिए आखरत के लिए भी, जन्नत के लिए भी रास्ते को मुतय्यन किया है। यानी ये सिर्फ दुनिया के रास्ते ही नहीं उसने दिए, उसने वहां के लिए भी तुम्हें रास्ता दिया है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। जो अल्लाह तुम्हारे नहीं चाहता कि तुम दुनिया में लॉस्ट हो, वो चाहता तो छोड़ देता ऐसे ही, डेजर्ट सी हर तरफ होते, ना कोई दरख्त, ना कोई टीला, ना कोई कुछ, कोई पहचान ही नहीं होती, कोई निशानियां ही नहीं होती, ऐसे ही तुम्हें छोड़ देता। लेकिन उसने तुम्हें यहां पे रास्ता दिया ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम लॉस्ट ना हो जाओ। जो तुम्हें यहां लॉस्ट नहीं देखना चाहता, वो चाहता होगा कि तुम जन्नत के रास्ते को लूज कर दो, लॉस्ट हो जाओ। जन्नत का रास्ता किस तरफ को जाता है? तुम दो अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ो। वो नहीं चाहता, उसने उसके लिए भी तुम्हें रास्ता बताया। वो कौन सा रास्ता है? वो ये है कुरान का रास्ता, जो सिराते मुस्तकीम पे रखेगा, बताता जाएगा किधर को चलना है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, तुम सही सही चलो, तुम्हें रहनुमाई मिले, गाइड है, गाइडेंस मिल जाए तुम्हें इससे। अल्लाह कितना गफूर और रहीम है ना, जिसने हमारी दुनिया और आखरत दोनों रास्तों के लिए हमारी रहनुमाई फरमा दी। इतना उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना, शुक्र करते हैं इसका, कुरान की नेमत का। बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर करते हैं, लेकिन कुरान की नेमत का भी इसी तरह कदर करते हैं कि उठते बैठते इस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र है कुरान मिल गया, शुक्र है मुझे कुरान मिला, शुक्र है मेरी जिंदगी में ये आ गया, ये ना होता तो मैं क्या होती। वल्लज़ी नज़्ज़ला मिनस समाई माअन, वो ज़ात है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी, बिक़दरिन, सात अंदाजे के, यानी अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया उसने आसमान से। कभी बारिश होती है ना, या स्नो वगैरह होती है, आप देखा करें इतनी बार दफा होनी शुरू हो जाती, सुबह से शुरू हुई और शाम हो गई है, स्नो बंद नहीं हो रही थी। उस वक्त दिल में यही ख्याल आ रहा था कि अगर ये बंद ना हो, वो दुनिया की कौन सी ताकत है जो इसको बंद कर सकती है, जो आसमान के खुले हुए दरवाजे बंद करे। जाओ अपने जहाज लेके जाओ, बंद करके आओ ऊपर से, कोई नहीं कर सकता। इसी तरह बारिश है, बारिश बरसने लगे, बार दफा बारिश शुरू होती है, कुछ दिन रहती है, अल्लाह चाहे तो वो बंद ही ना हो और वो चलती ही जाए हत्ता के सब डूब जाए, लेकिन वो एक अंदाजे से होती है, अल्लाह अंदाजे से नाजिल करता है। इसी तरह वो चाहे तो ना नाजिल करे, जितनी होनी चाहिए उतनी भी ना करे, और फिर क्या होगा, कैद साली, खुश्क साली। तो वो अल्लाह ही है जो जिसने नाजिल किया आसमान से पानी को, बेकदर इन सात अंदाजे के साथ नाजिल करता है। फअनशरना बिही बल्दतम मैता, फिर जिंदा किया हमने इसके साथ मुर्दा जमीन को, यानी फिर इसी पानी के जरिए, बिही की जमीन किस तरफ जा रही है, माँ की तरफ, पानी की तरफ, इसके साथ मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया, कि पहले डेड पड़ी हुई थी, उसमें सब्जा लहलहाने लगा, ग्रीनरी आ गई। आप देखते हैं, आप तो नहीं वो कुछ उगाते, लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद आते हैं नन्हे नन्हे पौधे उगाते, ग्रीनरी निकल आती है, पहाड़ है आप देखें पूरे फुल ग्रीन है, वो किसने उगाया, कोई वहां पे प्लांट नहीं करने गया, दरख्त अल्लाह ने उगाए। तो ये मुर्दा जमीन को वो जिंदा करता है इस पानी के जरिए, और इस सिनेरियो को याद करा के फिर क्या याद कराया, देखें आप आगे भी देखेंगे, आगे अगली आयात में सफर की जहां पे बात आती है कि अल्लाह ताला दुनिया की कोई मिसाल देके ना आखरत फौरन याद कराते हैं, जैसे माइंड को डाइवर्ट करा दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, आपका जहन अभी यहाँ है कि बारिश हुई है, जमीन से सब्जा निकला, और साथ ही अल्लाह ताला वहां ले गए आखरत में, कदालिका तुखरजून, इसी तरह तुम निकलोगे, यहाँ की चीज से वहां की याद दिलाई। इसी तरह हमें हमारी ना कुरान पढ़ के ऐसी थिंकिंग हो जानी चाहिए कि जब हम यहाँ की चीजों को देखें तो हमें वहां की याद दिला दे, यही ना खो जाए कि बस अगर ग्रीनरी देख रहे हैं, हाँ वाकई बड़ा मजा आ रहा है, बारिश आ गई, बहुत अच्छा हुआ, नहीं फिर फौरन आखरत की सोच हमें दी कि इसी तरह तुम निकलोगे। कैसे निकलेंगे इंसान, ये जो मुर्दा होंगे, इसी तरह अल्लाह ताला बारिश करेगा एक, और इंसान उगेंगे, उगेंगे बाकायदा हदीस में यही है कि वो उगेंगे जैसे पौधे उगते, अल्लाह ताला फिर उनके अंदर रूह डाल देगा, वापस जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
हामी الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون